So, we're very happy to be here with all the assembled Vaishnavas.
Guru Maharaj.
Uh-oh. What about the wired mic over there?
Hare Krishna.
That's better.
Hare Krishna, Guru Maharaj ji, bahut prasann hai, sab sahu yatra mein aane se.
So it's a very auspicious day in the Vaishnava calendar.
Aaj Vaishnava calendar ke anusar bahut hi khat divas hai.
It's the appearance day of Srinivas Thakur, and I'm going to speak about him tonight.
Srinivas Thakur ji ka avirbhav divas mahotsav hai.
So, the story is as follows. Let's start talking in general about the incarnations of the Supreme Personality of Godhead.
Guru Maharaj ji, jo Bhagwan ke vibhinn avatar hain, unke bare mein varnan karenge.
The word avatar means to come down or to cross down from the spiritual world.
Avatar ka arth hai ki upar se divdham se niche aana.
So, Krishna has many avatars, actually unlimited avatars.
Krishna Bhagwan ka kai vibhinn avatar hain.
It's described in the Srimad Bhagavatam that as many waves as there are in the ocean, that's as many avatars that Krishna has.
जैसे आप देखेंगे सागर में कई लहरें हैं उसी तरह भगवान श्री कृष्ण से कई विभिन्न विभिन्न अवतार निकलते रहते हैं.
That means unlimited waves, unlimited avatars.
मतलब अनगिनत अवतार होता है.
So, he has avatars in every species of life.
हर एक योनि में भगवान एक एक अवतार लेते हैं.
It's like we know there are 8,400,000 species of life.
84 लाख योनि में आप सभी लोग जानते हैं.
And therefore, Krishna has at least 8,400,000 different types of appearances.
उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के उतने अवतार भी हैं.
So, we know that Krishna appears as Matsya avatar, the fish incarnation, Kurma avatar, the tortoise incarnation.
आप सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मत्स्य अवतार लिया, कुर्मा अवतार लिया.
Lord Nrsingadev, half man, half lion incarnation.
Narsingh Bhagwan, adha sher ka, adha manush ka avatar liya.
And as Lord Ram.
Aur Bhagwan Shri Ram.
And when Krishna appears, he comes, Prichranaya, Saranam, Vinashaya, Chadushritam, to annihilate the miscreants and to establish religious principles.
Aur Bhagwan Shri Krishna jab avatar lete hain to dano ka vinash karte, sadhuon ko raksha karte, dharm ki sthapna karte.
And he also comes for his own enjoyment to taste what we call ras.
Aur sabse pehla bada baat ye hai ki wo swayam apne rason ka swad karne ke liye aate sansar mein.
Ras means different relationships, the taste from different relationships.
Ras ke matlab hai alag alag sambandh jo Bhagwan Shri Krishna kayam karte hai aur us rason ka swad karte hai.
So, Krishna being the most important person never comes alone.
Bhagwan Shri Krishna lekin jab bhi aate akele nahi aate hain.
He always comes with his associates and his devotees.
Apne saathi logon ke saath mein aate
hain. Not only does he come with his associates, he comes with his expansions too.
Khari apne parth sathiyon ke sath mein apne vistar ke sath mein bhi aati hai.
And I'll explain what I mean by that. There's different types of expansions that Krishna has.
Bhagwan Shri Krishna ka jo vistar hai alag alag rakam se hai.
There are two basic ones, actually three. Swamsa, Vidhinamsa and Shakti.
तीन तरह का गुरु महाराज बता रहे हैं, एक स्वमसा अवतार है, विध्वंसा अवतार है और एक शक्ति.
So, Swamsa means what we call Vishnu Tattva. In other words, the same as Krishna, the same as Ram, just a different type of activity and a different appearance.
Swamsa avatar matlab wahi bhagwan hai, uska vistar ho raha hai, khali alag alag kaar karte hain, lekin ek saman rehte hain.
Now, when we talk about Vidhinamsa, that means jiva souls like you and I.
लेकिन जब विवंसा की बात है भगवान का विस्तार है लेकिन वो जीव तत्व है हम और आप जैसे.
And Shakti means the certain potencies of the Supreme Personality of Godhead, like Srimati Radharani and Sita Devi.
और जब शक्ति की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं जैसे श्रीमती राधारानी है सीता देवी है वो भगवान की शक्ति है.
Just like when Lord Rama appeared, he appeared with his three brothers.
भगवान श्री राम जब प्रकट हुए थे तो अपने तीन भाइयों के साथ में प्रकट हुए थे.
Of course, there was Lakshman, Bharata, and Shatrughna.
सभी लोग जानते हैं लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न को और भरत जी को.
So these are all Swamsa expansions of Ram. That means they are the same person, just acting in different ways simultaneously.
तो आप चार भाइयों को देखेंगे, वो एक ही है लेकिन अलग अलग कार्य कर रहे हैं, उसको स्वंसा अवतार कहते हैं.
And then also there are Vibhinamsa jiva souls who appeared to serve Ram like Dasarath.
लेकिन वहां पर विभंसा अवतार भी हुए थे जैसे दशरथ, जो भगवान को सेवा प्रदान कर रहे
थे. And Vibhishan.
और भीषण जी भी थे.
And all of Ram's devotees who appeared with him.
और राम जी के जितने भक्त लोग थे सब वो विभंसा अवतार होकर भगवान जी को सेवा कर रहे थे.
And when Krishna appeared over 5,000 years ago, then Balaram appeared.
जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे तो स्वंसा अवतार में बलराम जी था.
Sankarshan, Pajuna, actually the what's called the Chaturvyuha expansions of the Supreme Personality of Godhead, Vasudev, Sankarshan, Pajuna, and Narimruda.
So Sri Krishna ka jo swamsa avatar hai, Chaturvyuha hai, usko Vasudev kehte, Sankarshan kehte, Anirudh kehte, Pradyumna kehte.
Very interesting. So when Krishna appeared over 500 years ago, approximately 500 years ago, he also came with his expansions. And he came with his devotees and his shaktis or energies.
उसी तरह 5000 साल कृष्ण गया तो फिर अभी 500 वर्ष पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए थे उसी तरह विभिन्न अवतार लेकर आए थे और अपनी शक्तियों को लेकर आए थे.
Now how do we know that Chaitanya Mahaprabhu is God?
कैसे हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान है?
Well, there are several ways that we know. One way is the scripture. The Shastra predicted his advent.
कई रूप से गुरु महाराज कह रहे हैं जान सकते हैं. पहला शास्त्र.
For example, in the Vedic literatures it mentions that the Supreme Lord will appear in Kali Yuga and his mother's name will be Sachi Devi.
शास्त्रों में वर्णन किया गया है कलयुग में भगवान का प्रकट होगा, उसका माता जी का नाम रहेगा सची देवी.
And it was declared where he would appear, what his mission was. Of course, that's Krishna Nam Sankirtan.
और वो आकर क्या करेगा? वो भी नाम संकीर्तन. ये सब वर्णन है शास्त्रों में.
So, our accepting Chaitanya Mahaprabhu as God, as the original Supreme Personality of God, is not based on sentiment.
Chaitanya Mahaprabhu स्वयं भगवान हैं. वो हमारा मन के विचारधारा पर नहीं स्थित है. वो शास्त्रों के विचारधारा पर है.
It's based on intelligent analysis.
वो बुद्धि का जो विकास होगा उसके अनुसार हम समझ पाएंगे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान.
Of course, nowadays you find so many people declaring themselves to be God because they can do a few little mystical tricks.
आजकल युग में तो बहुत लोग भगवान बन गए क्योंकि कुछ कुछ उनके पास जादू टोना है वो कर रहे हैं.
But my spiritual master Srila Prabhupada stated that they are not God, they are DOG.
गुरु महाराज कहते हैं मेरा जो गुरु श्री प्रभुपाद जी वो इन लोगों को कहते हैं वो जीओडी जिसको गॉड कहते हैं, इधर से नहीं उधर से शुरू करो तो डॉग हो जाते हैं.
So, in order for someone to be declared or to be understood to be God, he has to be predicted in the shastras.
कोई प्राणी भगवान अगर अपने आप को कहते तो अपना प्रमाण दीजिए, शास्त्रों में है हम लोग मान लेंगे.
And show certain qualities like Krishna did lifting Govardhan Hill with the pinky of his left hand.
और कुछ कुछ अद्भुत कार्य आप करके दिखा दीजिए, जैसे कृष्ण भगवान ने काली उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किए.
Then we know he's God.
और हम लोग जान जाएंगे वो भगवान है.
So based on evidence, we are sure that Lord Chaitanya is God, and he came with his associates and expansions.
उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भगवान है और अपने विस्तार पूर्वक साथियों के साथ आए.
His primary associates and expansions and energies are known as the Pancha Tattva.
और उनका जो विस्तार हुआ वो उसको कहते हैं पंच तत्व.
That means the five manifestations of the absolute truth.
यानी कि भगवान का पांच ये जो विस्तार है उसको ही पंच तत्व कहते हैं.
So of course Lord Chaitanya is Krishna himself. He is in the category what we call Vishnu Tattva.
चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों में स्वयं भगवान है जो हम लोग विष्णु तत्व रूप से जानते हैं.
एंड देन आफ्टर दैट यू हैव लॉर्ड नित्यानंद.
उसके बाद में कृष्ण महाप्रभु का लॉर्ड नित्यानंदा
जो इज ऑल्सो विष्णु तत्व
वो भी विष्णु तत्व है
एंड चैतन्य महाप्रभु एंड लॉर्ड नित्यानंदा इज नॉन डिफरेंट देन बलराम
और दोनों में कोई फर्क नहीं है
एंड नॉन डिफरेंट फ्रॉम लक्ष्मण व्हेन लॉर्ड राम अपीयर्ड
जैसे राम और लक्ष्मण में कोई अंतर नहीं था उसी तरह चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदा में कोई अंतर नहीं है
So Lakshman, Balaram, Nityananda, they're the same expansion from the Supreme Personality of Godhead.
जैसे भगवान का जो विस्तार होता है तो प्रथम विस्तार बलराम है वही लक्ष्मण बनता है वही यहाँ नित्यानंदा बनता है
And as Balaram did, as Lakshman did, Nityananda serves the Supreme Personality of Godhead.
जैसे बलराम जी ने किया है जैसे लक्ष्मण जी ने किया उसी तरह नित्यानंदा राम जी ने चैतन्य महाप्रभु को उसी भांति सेवा प्रदान किया
सो वी सी इन द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड राम दैट लक्ष्मण वाज द यंगर ब्रदर
भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो लक्ष्मण जी जो है राम जी का छोटा भैया बनकर है
बट लॉर्ड राम गेव लक्ष्मण अ बेनेडिक्शन एंड लक्ष्मण एस्क्ड That from now on he wanted to be the older brother.
भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का सेवा देखते हुए कहा कि तुझे मैं वरदान देना चाहता हूँ उसने कहा अगर वरदान देना तो लौट के छोटा भाई नहीं बनाना
Because when he was the younger brother, he had to do many things that Lord Ram asked him to do that he didn't want to do.
क्योंकि जब छोटा भाई बना था तो उसके बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ा वो करना पड़ा जो शायद उसको नहीं भी अच्छा लगा हुआ था
Like putting Sita Devi in the fire or sending her to the forest.
लक्ष्मण जी को सीता मैया को अग्नि में प्रवेश कराना पड़ा लक्ष्मण जी को सीता मैया को वन में जाकर छोड़कर आना पड़ा
सो लॉर्ड नित्यानंदा बलराम इज ओल्डर देन चैतन्य महाप्रभु
जो नित्यानंदा राम है तो वो फिर बड़ा बन गया लक्ष्मण जी वरदान मांगे तो बलराम बड़ा बने और नित्यानंदा भी चैतन्य महाप्रभु से बड़ा थे
सो देन देयर इज अनदर एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड नोन एज अद्वैत आचार्य
एक और एक विष्णु तत्व का अवतार है जिसको तीसरा हम लोग कहते हैं अद्वैता जी
अद्वैता जी इज ए मैनिफेस्टेशन और ऑफ हिज विष्णु तत्व बट ही इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सदा शिव
वो विष्णु तत्व का विस्तार है लेकिन वो सदा शिव
सो द ओरिजिनल पर्सनालिटी फ्रॉम हुम लॉर्ड शिव एक्सपैंड्स इन दिस वर्ल्ड इज विष्णु तत्व इज गॉड
तो जहां से शिवा प्रकट होते हैं सदाशिव वो विष्णु तत्व से ही प्रकट होते हैं
एंड सो अद्वैताचार्य इज ऑल्सो नोन एज महाविष्णु
तो अद्वैताचार्य जो है वो महाविष्णु कहलाते हैं
सो देन आफ्टर दैट देयर इज गदाधर द फोर्थ मेंबर ऑफ द पंच तत्व
तो पांच में से जो चौथा है वो गदाधर जी है
एंड ही इज राधारानी
तो वो जो है वो राधा रानी जी है
सो इन अदर वर्ड्स गदाधर इज राधा रानी अपीयरिंग इन अ मेल फॉर्म
तो आप देखेंगे कि गदाधर जो है वो राधा रानी स्वयं एक पुरुष के अवतार में आते हैं
एंड देन फाइनली देयर इज द जीवा तत्व मेंबर ऑफ द पंच तत्व हिज नेम इज श्रीवास ठाकुर
तो अब रह जाता है आखिरी वाला जीवा तत्व तो आपने तीन विष्णु तत्व जाने गदाधर शक्ति तत्व है अब जीवा तत्व है जो स्वयं श्रीनिवास है
सो ऑल ऑफ दीज मेंबर्स ऑफ द पंचतत्व एक्सेप्ट फॉर गदाधर अपीयर्ड बिफोर चैतन्य महाप्रभु टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हिज अपीयरेंस
चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ये सब आ गए थे उनकी योजना बनाने के लिए उनकी प्रकट होने की सब तैयारी करने के लिए
सो एज आई मेंशन्ड बिफोर श्रीवास ठाकुर इज नारद मुनि एंड हिज ब्रदर is actually an incarnation of Parvat Muni, who is the eternal servant and associate of Narada Muni.
So, आप देखेंगे कि जो स्वयं नारद जी हैं, वो वही श्रीनिवास आचार्य बनकर आते हैं, और उनका एक साथी है, जिसको पर्वत मुनि है, वो भी आकर भाग लेते हैं.
So, in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, he wanted to show us the purpose of accepting a spiritual master.
Chaitanya Mahaprabhu के लीलाएं में वो क्यों गुरु लिया जाता है उसमें शिक्षा मिलते हैं
Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu also accepted a spiritual master.
चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी गुरु को धारण किया
And before he accepted a spiritual master, he did not manifest himself as a devotee.
जब तक उसने गुरु को धारण नहीं किया था तब तक वो भक्त का लक्षण वो नहीं दिखाए नहीं प्रकट किए
Of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, but he's in the mood of his greatest devotee, Srimati Radharani.
क्योंकि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, लेकिन वो राधा रानी का भाव लेकर इस संसार में आए
He appeared in Radharani's mood because he wanted to understand Radharani's love for him.
वो राधा रानी का भाव में क्यों आया क्योंकि वह स्वयं राधा रानी का प्रेम समझना चाहता था
He also wanted to see himself through Radharani's eyes.
वो अपने आप को देखना चाहता है कि मैं कितना सुंदर हूँ और राधा रानी के ही नेत्रों के द्वारा अपने आप को दर्शन करना चाहता
And he wanted to enjoy from the standpoint or the perspective of his devotee.
और तीसरा चीज है वो स्वयं आनंद करना चाहता है कि भक्त मेरा भक्ति में क्या आनंद लेते हैं वो आनंद स्वयं भगवान खुद लेना चाहता है
So, but he didn't show any of that until he took initiation.
लेकिन ये सब वो तब तक नहीं प्रकट किया जब तक उसने दीक्षा नहीं लिया
Before he took initiation, he was even arguing with the devotees and attacking them philosophically, not physically.
और दीक्षा से पहले वो तो स्वयं भक्तों के ऊपर प्रहार करता था ज्ञान के द्वारा
In fact, the devotees, when they saw Chaitanya Mahaprabhu, they would run away.
भक्तों जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखते थे भाग जाते थे इसके छोर से
Because he was so intelligent, he could defeat anybody with logic and reasoning.
वो इतने बुद्धिमान था कि वो किसी को पराजय कर सकता था अपने बुद्धि से तर्क से और बुद्धि से वो किसी को पराजय कर सकता
So once upon a time, Srivas Thakur went to Lord Chaitanya, who was known, he wasn't known as Lord Chaitanya, he was known as Nimai Pandit.
So ek baar kya hua Srinivas, jiska aaj utsav hai, wo gaya tha Chaitanya Mahaprabhu, us samay Chaitanya Mahaprabhu ne uske naam Nimai tha.
And he said to him, don't you know the purpose of life? You're wasting your human form of life.
So Srinivas ne kaha, manush jivan ka laksh nahi jante ho, tum apna manush jivan ka laksh jo hai, barbaad kar rahe ho.
Because what? Is the human form of life meant for self-realization? It's not meant for eating, sleeping, mating, defending, and increasing our animal propensities.
मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मजिज्ञासा करना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम इसके लिए मनुष्य जीवन का नहीं मिला हमें.
Prahlad Maharaj himself states in the Bhagavad, "Durlabham manasa janma tadap dhruvam arthadam." This human life is very, very difficult to get. Therefore, you should Take advantage of it.
Prahlad Maharaj Bhagavat Puran mein kehte hai ki manush sharir jo humne prapt kiye bade durlabh se kathin se prapt kiye hai to iska pura labh uthaiye.
In fact, Prahlad Maharaj said the children should take advantage of it from the very beginning of life.
Jitne manush hai wo apna jeevan jo hai laksh prapti karne ke liye ekdam kumar avastha se shuru kar dena chahiye.
So, in fact, he had his friends chanting and dancing as he was preaching to them.
और प्रहलाद महाराज जी अपने जितने साथी लोग के बताते थे वो लोग नाचते थे भगवान के नाम में कीर्तन करते थे
And then also, Lord Rishabhadev, in the fifth canto of Srimad Bhagavatam, states to his sons, who were very young, he says, Nayam deho deha bhajam niloke kashtam kamam arhate vidbhujam ye. He said, don't simply act like pigs.
ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को जब जवान थे उनको बताया कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो सुअर बनने का नहीं है
सपो दिव्यम पुत्र को ये ना सपोद यू शुड एक्चुअली एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डू अ लिटिल ऑस्टेरिटीज
मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भावना मृत में आना और भगवान को समझते हुए तपस्या करते हुए अपने आत्मा अंतकरण को शुद्ध करना
सो श्रीवास ठाकुर वाज एडवाइजिंग Nimai लाइक दिस
तो श्रीनिवास ठाकुर जी स्वयं भगवान जो निमाई है उसको ज्ञान दे रहे हैं
एंड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और सॉरी निमाई ही सेड बेसिकली बाय योर मर्सी इट विल हैपन आई विल बिकम अ डिवोटी
और निमाई जी जो है वो कहते हैं आपकी कृपा से मैं भक्त बन जाऊंगा
एंड Lord Chaitanya said, by your mercy, I'll become such a good devotee that even Lord Brahma will worship me.
और निमाई जी कहते कि मैं इतना अच्छा भक्त बन जाऊंगा कि स्वयं ब्रह्मा जी मेरी पूजा करेंगे
Now, if any of you would say that, I'd say you were crazy. So, actually, Srivas Thakur thought that Nimai was crazy when he said that. But later on, after Lord Chaitanya took initiation, very important lesson for us, from Ishwara Puri, he manifested his actual position. First of all, he manifested he was the greatest devotee of the Lord, and second of all, he manifested that he was God too.
दो चीज उसने प्रस्तुत किया पहला ये वो भगवान का सबसे उत्तम भक्त है क्योंकि राधा के भाव में दूसरा कि वो स्वयं भगवान भी है
and when he came back after taking initiation in Gaya from Ishwarapuri he called Srivas Thakura to him and he was sitting on the singhasana of the altar
और चैतन्य महाप्रभु गया में जब दीक्षा लेकर वापस आया तो वो जाकर स्वयं श्रीनिवास जी का जो सिंहासन है वहां पर बैठ गया जहां ठाकुर जी रहते
And when Srivas saw Lord Chaitanya sitting on the altar, he thought, wow, this is a problem.
अब जब श्रीनिवास जी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनके ही ऑल्टर पर बैठा है तो बोला ये तो बहुत बड़ा समस्या होगा
But then, Chaitanya Mahaprabhu, actually Nimai, still Nimai, he manifested four arms like Lord Vishnu.
तब भगवान यानी निमाई जी चतुर्भुज रूप में आया श्रीनिवास को दिखाने के लिए
And then Srivas bowed down to Chaitanya Mahaprabhu, to Nimai, keep saying Chaitanya. He bowed down to Nimai and he understood that Nimai was God.
तो उसने तुरंत अष्टांग में दंडवत प्रणाम दिया और समझ गया कि निमाई ही स्वयं नारायण है
So this is a quality. If someone declares themselves to be God, they should show their four arms. Not simply that they swallow a Shiva Linga and then they could come out of their mouths again. One time I saw some bogus God. He did that.
एक बार गुरु महाराज जी स्वयं देखे थे ऐसा किया था
So I was very interested to learn the trick so I can also be God.
गुरु महाराज वो उनके जो चलाकीपन वो सीखना चाहते थे उसने सोचा कि
So I consulted a magician to find out how he did it.
तो गुरु महाराज एक जो जादूगर है उसके पास गया पूछने कि ये सब कैसे करते हैं ये लोग
And the magician said it is very easy.
और वो जादूगर ने कहा अरे सहज है
I will show you.
मैं तुझे अभी दिखाऊंगा
So the magician made a frog come out of his mouth.
तो जो जादूगर है वो क्षणिक मात्र में मेंढक अपने मुख से निकाल के दिखा
And I said, oh my God, you must be God too.
गुरु महाराज कहने लगा तुम भी भगवान ही होता
No, but he said, basically I train the muscles in the digestive tract to hold the thing there. You know, whatever I swallowed before, I hold there and then I make it come up.
गुरु महाराज कहते हैं उसने कहा नहीं कोई भारी बात नहीं है मेरा जो सिस्टम है मैंने उस अपने आप को उस योग का से जो कुछ मैं लेता हूँ यही रोक लेता हूँ और ऑसोफेगस के द्वारा और मैं इसको फिर भारी निकाल देता हूँ
And I said, now I know you're not God. So, anyway, so God is not someone who simply makes things come out of their mouth. Or pulls money out of someone's ear or something like that. Anyway, you have to show four arms. That's prerequisite.
अब सबसे उत्तम कार्य है भगवान होने का कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए शंकर चक्र कदा पदम साथ
एंड ऑल द फोर आर्म्स हैव टू वर्क
और चारों हाथ चलना चाहिए
एनीवे सो श्रीवास एट दैट पॉइंट अंडरस्टूड दैट निमाई वाज गॉड
श्रीनिवास जी समझ गए कि चतुर्भुज रूप में आया तो ये भगवान ही
एंड ही प्रोसीडेड फ्रॉम देन ऑन To have these famous kirtans at his house, which is called the Shiva Sangam.
और उसी दिन से अपने ही प्रांगण पर वो जो कीर्तन है जिसको हम कहते श्रीनिवास आंगन वहीं से फिर चालू हो जाता है.
And every night they would have kirtans, and some of those kirtans went on for 72 hours.
और कीर्तन ऐसा चलता था, सब बताया गया है, सात और दो यानी कि 72 hours वो चलता जाता था.
So Srivas Thakur was so absorbed in Nimai's service that he never had time to get a job.
और श्रीवास ठाकुर जी निमाई जी के सेवा में ऐसे ही डूब गए थे कि उसके धंधा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं था.
He didn't have to grow kava or anything.
उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं था.
So much. Sorry about that. I apologize. So anyway, so Lord Chaitanya Mahaprabhu asked them, how do you maintain your family? Because he had a big family.
Nimaiji ne pucha, ki tum apne ghar ko kaise sambhalte ho, tumhare paas kitne dher palwar hain.
And yeah, like quite a large family. And Srivas Thakur replied, I have a 1-2-3 technique to maintain my family.
और उसने कहा मेरे पास तीन तरीके हैं जिससे मैं अपने परिवार को सुरक्षा करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ.
He said, if I have to fast for 3 days, I'll tie a stone to myself and drown myself in the Ganges.
अगर मुझे तपस्या करना है तो मैं पत्थर से अपने आप को बांधकर और गंगा में जाकर गोता लगा लेता हूँ.
And Lord Chaitanya was shocked when he heard that. He said, all right. I guarantee that you will always have enough, even if you don't work.
So usne jaise aise kaha to bhagwan ne suna to bhagwan ne kaha theek hai aaj ke baad main tujhe vardaan deta hu ki tumhare ghar mein hamesha bharpur rahega ann se.
He said even if Lakshmi, the goddess of fortune, has to go begging, you'll have enough to eat.
Yahan tak bhi bhagwan ne kaha ki Lakshmi maiya swayam चाहे उसको भिक्षा मांगना पड़े लेकिन तुम्हारे घर में हमेशा भरपूर है.
And actually, that's very similar to a verse that we know. Nitya Nitya Nam Chaitanya Chaitanya Nam Eko Vaho Nam Yovadadati Kama. That the Lord is maintaining all of us, not just us, but every living entity.
इसका अर्थ ये हो जाता है कि वो भगवान नित्य है, हम सब जीव भी नित्य है, वो सबको पालन पोषण करता है.
So one has to have that faith, of course. We do have to work to make a living too.
ऐसा हमारे में श्रद्धा हो जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हाथ गोड़ बैठकर बैठ जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा.
And Srivas Thakur also showed how important it is to be very careful when dealing with Vaishnavas.
श्रीनिवास ठाकुर और एक बहुत ही भयमूल ज्ञान हम सबको दे, जब भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं तो कैसे करना चाहिए.
It's actually Srivas, not Srinivas. Srinivas is a different person.
Srivas jo hai wo hum log ko ye shiksha dete hai.
So there's many stories that prove this point. One story that comes to mind is that there was once a Brahmin who was very upset that Srivas Thakur would not let him into his house for the kirtan.
Ek Brahmin tha jahan par Srinivas Thakur ji usko वर्जित करते हैं कि मेरे घर में प्रवेश मत करना.
So because when Srivas Thakur had his kirtan that went on for many hours, sometimes 72 hours, they put a guard at the door to make sure that the only people who entered were pure devotees.
So Srivas Thakur ji अपने ही घर के आगे कुछ लोगों को नियंत्रण करने के लिए धरे थे कि खाली शुद्ध भक्त अंदर आए कीर्तन करने के लिए.
They checked their identification, pure devotee identification.
तो वो लोग बहुत ही निरीक्षण करते थे कि ये अच्छा भक्त है कि नहीं और कब प्रवेश करा.
Just like in this material world, there are bars and they always have what's called a bouncer that kicks you out if you're not qualified.
जैसे आप सभी लोग जानते हैं, दारू खाने लगा पीने लगा चले जाएंगे वहाँ बाउंसर लोग खड़ा रहे. अच्छा पियता नहीं तो आपके खेत दे.
So they checked everybody. Are you a pure devotee? You can't come in if you're not a pure devotee.
इसी तरह वहाँ पर वो सभी लोग देखते थे आप अच्छे भक्त हो, आपको श्रीनिवास आंगन में आपको प्रवेश नहीं.
And we did that, the room would be empty.
अगर गुरु महाराज कहते हम लोग करेंगे यहाँ खाली रह जाए.
So there was this Brahmin they just wouldn't let in.
और ये ब्राह्मण को वो लोग वर्जित कर दिए थे, अंदर नहीं आ पा रहे थे.
So he thought, let me make it look like Srivastava Kaur is not worshipping Krishna, he's worshipping Durga instead.
और उसने क्या किया, उसने ऐसा प्रस्तुत किया कि हम दुनिया को बताएंगे ये भगवान को पूजा नहीं करता, ये दुर्गा को पूजा करेगा.
So what he did is he took the ingredients for worshipping Durga like vermilion and other things and put them right at Srivastava Kaur's door.
तो दुर्गा की पूजा करने के लिए हरदी मांगे, पानी मांगे, लाल फूल मांगे, अरोड़ के फूल मांगे, ये सब बटोर के लायक हुए द्वारी भर जी.
And Srivastava Kaur woke up the next morning and said, all right, everybody knows I'm worshipping Durga, but he really wasn't.
तो जब श्रीनिवास ठाकुर जी उठा और देखा ये सब और वो समझ गए ये तो सब दुर्गा जी की पूजा करने के समान है, तो मतलब लेकिन मैं तो नहीं करता हूँ.
But this person, his name was Gopal Chapala, after 3 days he got leprosy.
और वो ब्राह्मण के नाम था गोपाल चपला, 3 रोज बाद उसे कोढ़ की बीमारी हुई थी.
And that means the fingers, maybe you lose your fingers, you lose your nose, everything's finished.
तो क्या इसके मतलब है कोढ़ की बीमारी, तुम्हारा उंगली, तुम्हारा नाक सब वो कीटाणु खा जाएगा.
That's the reaction for offending a Vaishnava.
वैष्णव भक्तों को निरादर करने का यही परिणाम मिलता है.
Of course, the first reaction for offending a Vaishnava is you lose your taste for hearing and chanting.
पहला लक्षण क्या होगा वैष्णव अपराध करने का, कि आपको जो कृष्ण कथा जो अमृत रस स्वाद हम करते वही चला जाएगा.
Second effect of offending a Vaishnava is you lose all material opulence and you lose the respect of everybody.
और दूसरा ये परिणाम है कि जो सांसारिक उपलब्धि आपने बटोरे सब खो जाएगा और जो मान सम्मान है ये सब चला जाएगा.
And the third effect is you go crazy.
और तीसरा आप पागल हो जाओगे.
You just become angry and envious and criticism of even more Vaishnavas.
कभी गुस्सा होगे, कभी दूसरे को निरादर करोगे, एकदम पागल हो जाओगे.
So what happened with this Gopal Chapala after getting leprosy, he was suffering so much.
गोपाल चपला को जब कोढ़ की बीमारी हुआ इतना कठिनाई सह रहे थे वो.
And then he went to Lord Chaitanya, begging Lord Chaitanya to forgive him.
फिर वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास गया, हाथ जोड़कर भीख मांग रहे मुझे क्षमा कर दो.
And he said to Lord Chaitanya, you are the most merciful, you are the most munificent, save me.
और उसने कहा कि हे भगवान चैतन्य आप बहुत बदन अवतार हो, मुझे आप कृपाए सुरक्षा प्रदान कीजिए.
And what did Lord Chaitanya say to him? He said, I curse you to be bitten by the same worms that are biting or inside your leprous sores for millions of births.
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया?
Wow.
जो बदन अवतार से कहा मैं शराब देता हूँ वो कीटाणु तुम्हें जन्म जन्म दुख देंगे.
That's very interesting because normally, as Rupa Goswami says, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namnai Gurse Namaha. Lord Chaitanya is so merciful. He saved Jagayan Mata, he saved so many people, but this particular rascal, he was cursing.
भगवान का ये बड़ा अद्भुत लीला गुरुदेव बता रहे हैं कि रूपा गोस्वामी ने कहा भगवान चेतन तो बहुत ही बदन अवतार है जो और अवतार नहीं हुआ ऐसा, लेकिन वो जगह मदाई को उद्धार किए जो नशेड़ी थे, लेकिन इसको वो शराब दे रहे कि जन्म जन्म वो कीटाणु तुम्हें काटते रहेंगे.
It is so serious to commit an offense against a Vaishnava. Of course, it's called a mad elephant offense.
इसी भक्तों का अपराध करना मतलब है कि पागल हाथी का प्रति है.
Just like an elephant comes into your garden, he destroys everything.
पागल हाथी मतलब पागल हाथी आपके बगीचा में चला गया और सब नाश कर देंगे.
So, why did Lord Chaitanya curse him? Because only a devotee who is the one who has been offended can forgive you.
चैतन्य महाप्रभु ने इसके क्यों शराब दिया? क्योंकि उन्हें एक भक्त के प्रति किया था. अगर भक्त क्षमा कर दे तो भगवान क्षमा कर दे.
Just like the story of Devrasa Muni. Devrasa Muni was a great sage, is a great sage, and he one time offended Maharaj Ambarish.
जैसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि दुर्वासा मुनि ने एक बार महाराज अमरीश जो भगवान के महान भक्त था उसके अपराध किया था.
He tried to kill Maharaj Ambarish because Maharaj Ambarish drank a little water before he gave him water.
और दुर्वासा जी उनके घर पर गए थे भोजन करने के लिए, लेकिन उसके पश्चात वो घर पहुंचे उसने पहले पानी पी लिया.
He created this demon to try to kill Maharaj Ambarish, and the demon was killed by the Lord Sudarshan Chakra.
और वो अपने दुर्वासा मुनि ने अपने बाल पकड़कर एक भयंकर दानव प्रकट किया कि ये अमरीश महाराज को लील ले.
And then the Sudarshan Chakra was chasing Durvasa Muni everywhere, all over the universe, and no one could save him. Even Lord Vishnu couldn't save him.
Amrish Maharaj ji ne Sri Bhagwan ko nivedan karne liye mahan bhakta Bhagwan ka Sudarshan Chakra gaya aur unke daano ko vinash kiya aur Durvasa ke piche piche bhaga. Yahan tak Vaikunth tak Bhagwan Vishnu ne kaha main nahi bacha paunga.
That's how serious it is to commit an offense against a Vaishnava.
कितना बड़ा अपराध हो जाता है अगर कोई प्राणी कोई भक्त का निरादर करता
है. कृष्ण says in the Bhagavad, sarva hridayam mayam saranam hridayam tvam maranyat tena janati aham taibyo managapi. The sadhus, that's the devotees, they have God in their hearts, they have Krishna in their hearts.
जो गुरु महाराज कहते हैं जो भक्त लोग रहते ना वो जीता जाता मंदिर के समान है, उनके हृदय में भगवान है.
But Krishna says, I also have the sadhus in my heart.
और भगवान कहता है कि इसी तरह साधु मेरे हृदय में सदियों रहते हैं.
And because these sadhus, the devotees, they do not know anyone else but me, I do not know anyone else but them.
साधु लोग भगवान के छोड़कर कुछ नहीं जानते, इसी तरह भगवान कहते मैं साधु छोड़कर कुछ नहीं जानता.
So finally, this Gopal Chapala rascal, He apologized to Srivas Thakura, and then Lord Chaitanya Mahaprabhu forgave him.
तो क्या हुआ अंत में, ये गोपाल चपला जो मूर्ख व्यक्ति था ये फिर जाकर श्रीनिवास ठाकुर से क्षमा मांगता है और जब क्षमा किया तब भगवान ने क्षमा किया.
And Srivas Thakura was so dear to the Lord that even there's a story, he had a tailor, the person who makes clothes, who was a meat eater, and that tailor was given pure devotional service because he served Srivas Thakura.
श्रीनिवास ठाकुर इतने महान भक्त थे कि उनका एक दर्जी था जो उनके कपड़ा वस्त्र सीते थे और वो मांस खाता था, क्योंकि वो श्रीनिवास जी को सेवा करते थे वो महान भक्त बन गया.
So just see the benefit of serving a Vaishnava. Sarusanga, sarusanga, sarvasrestra koi, lavamatra, sarusanga, sarvasiri ho. All perfection is there by serving a Vaishnava.
तो इस बार आप देखिए भक्तों को सेवा करने के परिणाम क्या है.
And all going to hell is there by offending a Vaishnava.
और उस पार देखिए भक्तों को निरादर करने के परिणाम क्या है.
It's your choice.
तुलना हम देख सकते हैं और हमें स्वीकार करना क्या
I see that many devotees, many not devotees, many people have dedicated their lives to offending Vaishnavas.
गुरु महाराज कहते हैं मैंने कितने लोगों को देखा है उसने जीवन का लक्ष्य बना लिया भक्तों को निरादर करने.
They go on the internet and their whole life is just focused on offending Vaishnavas. Then they go crazy, they lose everything.
वो इंटरनेट में भी चले जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, सिर्फ जीवन का लक्ष्य बना लिया निंदा करने का.
And some people are so dedicated just to serving Vaishnavas in a very humble way.
और कुछ लोग ऐसे विनम्र भाव में खाली भक्तों को सेवा करते चले जाते हैं.
Just like once upon a time, Srila Prabhupada, when he started the movement, he was in New York.
एक समय गुरु महाराज कह रहे श्रील प्रभुपाद जी जब ISKCON की स्थापना की है उस न्यूयॉर्क में थे.
And is the first temple of ISKCON called 26 Second Avenue.
और 26 Second Avenue में न्यूयॉर्क जब ISKCON की स्थापना कर रहे थे.
So Prabhupada was giving a lecture like this.
श्रील प्रभुपाद जी इसी तरह एक प्रवचन कर रहे थे.
And one, I guess you would say, a bum or a street person came in and just brought some, donated some toilet paper for the toilet.
और एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति कुछ जो बताया कि टॉयलेट पेपर है वो लाकर दे दिए थे.
And Prabhupada was very pleased and blessed him.
प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिए.
So to get Krishna's mercy, to get the pure devotee's mercy, you don't have to do something fantastic, you just have to give your life.
भगवान से कृष्ण की कृपा चाहते हो खाली भक्तों का आशीर्वाद ले लीजिए.
So, and Lord Chaitanya Mahaprabhu also sometimes tested Srivas Thakur.
और चेतन महाप्रभु जो है कभी कभी उनको परीक्षा लेते थे श्रीनिवास ठाकुर जी को.
Because he wanted to see if Srivas Thakur properly appreciated Lord Nityananda.
और वो देखना चाहते थे कि श्रीनिवास ठाकुर जो नित्यानंदा है मेरा विस्तार है इसको कैसे सेवा करते.
So let me explain something about Lord Nityananda. He was known as the Avadhuta.
गुरु महाराज जी नित्यानंद जी के बारे में बता रहे जो अवधूता है.
Avadhuta means like the wind. So he wasn't acting like a normal devotee. Sometimes he would wear a lot of jewelry, a lot of opulent clothes, and other times he would just like act almost crazy in Krishna consciousness.
अवधूता के मतलब जितना पागल हो जाता है भगवान वो कभी कुछ बहुत कुछ करता है कभी कुछ नहीं करता.
And Lord Chaitanya said to Srivas Thakur, why do you let this Lord Nityananda into your house? Nobody knows whether he's crazy. Nobody knows his background. Don't let him in your house.
और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीनिवास ठाकुर के तुम ये नित्यानंद जी को क्यों अपने घर में प्रवेश किया इतने पागल है अवधूत है इसे क्यों हला दिया अंदर.
And Srivas Thakur answered that even if I see Lord Nityananda going into a liquor store, or even if he marries a Muslim girl, I will still have faith in him.
श्रीनिवास ठाकुर ने बड़ा उत्तम विचार प्रकट किया अगर मैं देखूंगा वो शराब खाना जा रहा है या किसी एक मुस्लिम कन्या से विवाह कर लिया मेरा श्रद्धा उसके प्रति कभी टूटेगा.
And Lord Chaitanya embraced Srivas Thakur after hearing that.
क्योंकि भगवान का विस्तार है कोई फर्क नहीं है और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत स्वालिंगन कर लिया.
So the biggest test that Srivas Thakur had to undergo was when his son died.
और श्रीवास ठाकुर जी का सबसे बहुत बड़ा परीक्षा हुआ जब उसका स्वयं का पुत्र जब निधन हो गया.
As I mentioned, Lord Chaitanya was having his kirtans every night in Srivas Thakur's house.
सभी लोग जानते हैं श्री आंगन में जब श्रीवास आंगन में कीर्तन होते थे चैतन्य महाप्रभु नित करते थे.
So once while they were having an ecstatic kirtan, Srivas Thakur's little son died in the middle of the kirtan.
और क्या हुआ भगवान कीर्तन कर रहे थे तो पीछे के बाद उनका जो एक छोटा सा बेटा है वो निधन हो गया.
And Srivas Thakur looked and he saw all the ladies were crying.
और श्रीवास ठाकुर ने देखा सब स्त्रियां उधर रो रही है.
And he said, why are you crying?
और जाकर पूछा क्यों रो रही हो.
And they said, your son died.
वो लोग ने कहा कि आपका पुत्र.
And Srivas Thakur was so determined he didn't want to stop the kirtan because Lord Chaitanya was experiencing so much ecstasy.
और इस बार इधर क्या हो रहा था भगवान गौरंगा महाप्रभु कीर्तन में डूब गए थे विभोर हो गए थे और श्रीवास जी नहीं चाहते थे कि उनके आनंद में कोई बाधा आ जाए.
So he yelled at his wife and he said, if you don't stop crying I'll give you something really to cry about.
और उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा आप तुरंत बंद कर दीजिए रोने को.
So we do not want to disturb Lord Chaitanya's ecstasy.
और मैं नहीं चाहता हूं कि भगवान का जो आनंद है जो कीर्तन का आनंद ले रहे उसमें कोई बाधा आ जाए.
So somehow or other she had to keep her eyes open and not cry. It's very hard for the ladies.
ये आप देख सकते हैं कि भगवान जो भक्त रहते हैं वो नहीं चाहते भगवान की कोई कार्य में कोई बाधा आ जाए.
Actually in Lord Ram's pastimes when Lakshman went with Ram, he said to his wife, Urmila, do not cry while I am gone.
और आप देखेंगे जैसे लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी से कहा था जब मैं भगवान जी के साथ जा रहा हूँ राम जी के साथ आप कदाचित कभी मत रोना.
So all you men should tell your wives no crying.
जितना पुरुष मंडल है अपने पति को कहना कि रोना
मत. So anyway, so continuing with the story about Srivas Thakur, he told his wife, don't disturb the kirtans.
और अपने पत्नी से कहा कि कीर्तन में कोई बाधा मत आने देना.
So then, after some time, Lord Chaitanya stopped the kirtan. He said, something's happened in this house.
और
tell me what has happened. Something not so good has happened.
थोड़ी देर बाद भगवान स्वयं कीर्तन को बंद किए और कहा कि कुछ मुझे अनहोनी लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हुआ है मुझे बताइए.
And Srivas Thakur said, it's nothing. It's nothing serious.
लेकिन श्रीवास ठाकुर एक झलक भी नहीं दिखाया कि उसके साथ उसका पुत्र का
someone died.
और उसने भगवान से नहीं कहा कि क्या हो रहा है उसके घर.
So Lord Chaitanya said, Srivas, why didn't you stop and tell me? And Srivas said that actually I didn't want to disturb your ecstasy.
और तब अंत में उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ है बस प्रभु जी बस मेरा बेटा का निर्धन हो गया उसने बोला क्या निर्धन हो गया मुझे बताया नहीं उसने बोला नहीं प्रभु मैं आपके भजन में कोई बाधा नहीं लाना चाहता
So then Lord Chaitanya went into the room where Srivas Thakura's son's body was lying and he touched him in the heart. He says, Why did you leave?
और भगवान तुरंत गया उस जगह जहां उसका मृतक शव पड़ा था उसे हृदय में छुआ और हृदय में छूते हुआ कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो
And this is another quality of God. He can bring people back to life.
और ये एक और एक दिव्य गुण है भगवान का कि मृतक प्राणी को जीवन दान दे ये सिर्फ वो भी कर सकता है
So Srivas Thakura's son sat up and he said, many, many lifetimes I have had, and he started speaking philosophy. And this was my last life in the material world because I passed away during your kirtan. I'm going back to Godhead.
और कहने लगा कि जन्म जन्म मेरा ऐसे जन्म हुआ है लेकिन इस समय प्रभु आप कीर्तन कर रहे थे मेरा जीवन धन हो गया और मैं वापस दिव्यलोक जा रहा हूँ
And Lord Chaitanya Mahaprabhu said to Srivas Thakura at this point, because you have acted in such a way, from now on, myself and Lord Nityananda will be your two sons.
और उस समय भगवान ने क्या कहा कि हे श्रीनिवास तुमने जिस तरह से आज अपने आचरण प्रस्तुत किए आज से मैं वचन देता हूँ कि मैं और नित्यानंदा सदैव तुम्हारा पुत्र बनकर रहूंगा
So then, from that point on, especially Lord Nityananda would actually come to Srivas Thakura's house and he would even sit on the lap of Srivas Thakura's wife.
और यहाँ तक फिर हुआ कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो उनके घर पर आते हैं उनके पत्नी के गोद में भगवान बैठते थे
Just like one or two more stories about the kirtan in Srivas Thakura's house. One story involves Srivas Thakura's mother-in-law.
और एक और गुरु महाराज जी कथा बताना चाहते हैं श्रीवास ठाकुर जी के जो सासू जी उनके बारे में
So Lord Chaitanya was having his kirtan. As I said before, they didn't allow anyone in who wasn't a pure devotee.
चेतन महाप्रभु ऐसे ही कीर्तन करते थे आप सभी लोग जानते हैं जो शुद्ध भक्त नहीं उसको अंदर नहीं आने देंगे
And then Lord Chaitanya at one point said, I'm not feeling any ecstasy.
लेकिन एक बार चेतन महाप्रभु कीर्तन कर रहे हो बोले मेरे तो विभोरता नहीं आ रहा है ऐसा क्यों
Someone must be here who is a rascal.
और उसने कहा कोई बीच में बैठा है जो भगत नहीं है
And so they looked all around the room and behind the curtain they saw this old lady.
और सब कोई देखने लगा कौन कौन है तो देखा वो प्रीत माता जी पीछे खड़ी है
Because she was not a pure devotee, they threw her out the door.
और कोई और नहीं था उनके सासू जी था और वो वृद्ध थी तो देखा तो उसको फिर भारी किया
There were many ladies there who were pure devotees, but this particular mother-in-law, Srivas Thakura, was not.
बहुत माताएं थे जो भगवान के अच्छे भक्त थे लेकिन ये नहीं इनमें थोड़ा साल का फर्क था
Another time, Lord Chaitanya was dancing. And he said the same thing, I don't feel any ecstasy, someone must be here who is not qualified.
भगवान नाच रहा है और भगवान को आनंद ना मिल रहा है तो समझ जाना वहां पर कोई प्राणी है जो छल का पट भरा है
And they looked around and then there was this Brahmin there. And Srivas Thakura said, he must be very qualified because he's just living by drinking milk.
क्योंकि वहां पर एक ब्राह्मण था तो शिवाजी ने कहा ये तो सिर्फ खाली दूध पर निर्भर है एक महान भक्त होगा
And so Lord Chaitanya Mahaprabhu said, you cannot be Krishna conscious just by drinking milk. So the Brahmin apologized to Lord Chaitanya, and then Lord Chaitanya purified him completely. So in this way, Srivas Thakura always assisted Chaitanya Mahaprabhu in his pastimes. When Lord Chaitanya took sannyas finally, He went to Jagannath Puri for the majority of the final years of his pastimes.
So आप देखेंगे श्रीवास ठाकुर हर समय भगवान चैतन्य महाप्रभु को सहयोग देते थे उनकी लीला में और फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथ पुरी चले जाते
And श्रीवास ठाकुर would come there every year to join Chaitanya Mahaprabhu in the for 4 months actually during the Chaturmasya period especially for the Ratha Yatra.
Aur Srinivas Thakur phir hamesha jaate the Jagannath Puri kyunki wo veera nahi le pate the aur jab yatra hote the aur Bhagwan Gauranga Mahaprabhu ka phir sang lete the.
So on this day we remember the pastimes of Srinivas Thakur with Chaitanya Mahaprabhu.
आज इस दिवस पर हम लोग श्रीनिवास ठाकुर जी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ उसने जितनी लीलाएं किए.
And we can serve Srinivas Thakur by engaging in this preaching activity of Krishna consciousness.
आप सभी लोग श्रीनिवास ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये कृष्ण भवन अमृत का आंदोलन जो है सभी तक पहुंचा रहे हैं, तो आप श्रीनिवास जी को
just like Srila Prabhupada was once asked by a devotee, I want your lotus feet, Prabhupada, the devotee said.
एक बार एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से कहा, श्रील प्रभुपाद जी हमें आपके चरण धूलि चाहिए.
And Prabhupada said, if you want them, my lotus feet are always moving.
श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, अगर मेरा चरण धूलि चाहते हो, क्योंकि वो तो पहली बार आचार्य चलते रहता है, वो तो हमेशा चलते रहते हैं.
In other words, Yari Dekatari Kara Krishna Vadesha Marigai Guru Hoi Tore Desh.
So, agar aap Guru ke raj dhuli chahte ho, Guru hamesha chalta hai, prachar karta hai, har ek prani ko, aap wahi karne lag jaiye, aapko raj dhuli mil jaye.
Chaitanya Mahaprabhu expected all of his followers to be Guru in the sense of instructing and bringing others to Krishna consciousness.
Chaitanya Mahaprabhu chahte hai ki jitne shishya hai, jitne aaj yahan baithe hai, sabhi Guru bane aur sabka udhar kare.
Even when Chaitanya Mahaprabhu was present, he wanted people to become gurus. He didn't like the Rithvic philosophy very much.
Chaitanya Mahaprabhu jab pragat the is prithvi par, tab bhi wo chahte the ki unke shish guru ban jaye.
One time Chaitanya Mahaprabhu was having an argument with some Buddhists.
Ek bar Chaitanya Mahaprabhu vartalap kar rahe the Buddhist log se.
And he defeated the Buddhists, and the Buddhists got very angry at him.
और जब बुद्धिस्ट के जो शिरोमणि उनको जब पराजित किया वो एकदम गुस्सा गए.
And they thought, we will ruin his reputation by feeding him some meat in the name of Mahapurusharam.
तो वो बुद्धिस्टों ने सोचा इसको हम लोग बर्बाद करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मांस खवाकर और इसको भंग कर देंगे.
So what happened is that Chaitanya Mahaprabhu empowered an eagle to take the plate of that impure food and drop it on the head of the chief Buddhist monk.
Aur kya hua, Bhagwan ne ek baanch ko prerna diya ki wo jo maas paka rahe plate la rahe mere liye utha kar le ja kar unko jo pramukh pujari unke sar par peeti.
And this chief Buddhist monk was completely unconscious. All of his followers went to Chaitanya Mahaprabhu and they said, what can we do, what can we do, our guru is unconscious.
Aur kya hua, utne upar se jab प्लेट उनके सर पे पटका गया और बेहोश हो गया, सब चले दौड़े चैतन्य महाप्रभु के पास, हमारा गुरु बेहोश हो गया, हम क्या करें, हम क्या करें.
एंड ही सेड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एंड ही इनिशिएटेड देम.
और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र दिया और सबको फिर दीक्षा दिया.
And then they went to their guru and initiated him right in front of Lord Chaitanya.
और ये सैनी लोग जाकर फिर अपने गुरु को दीक्षा ली चैतन्य महाप्रभु के आगे.
So they became the gurus of their guru.
सैनी लोग जो थे वो सब अपने गुरु के गुरु बन गए.
So you see, even Lord Chaitanya turned a Buddhist who didn't believe in Krishna as to gurus, turned them into gurus.
तो आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो गुरु जो भगवान कृष्ण में नहीं विश्वास करता था उनके चैलों से उनको दीक्षा दवा दिया.
So it is up to all of us to accept this mission of Chaitanya Mahaprabhu and carry it out.
ये तो हमारे ऊपर है कि हम चैतन्य महाप्रभु का जो ये मिशन है, ये आंदोलन है, इसको स्वीकार करें और हम भी ये आंदोलन मचा सकते.
Just like I was speaking to the devotees the other day, of course we all know about Garga Muni Prabhu who passed away.
गुरुदेव बता रहे थे कि एक अभी हाल ही में जैसे गार्ग मुनि जी अभी हम सबको छोड़कर गए.
And they were saying, devotees were saying, you got to send someone else to save us.
और भक्त लोग कह रहे हैं कि आपको दूसरे जन को भेजना हमें बचाने के लिए.
And I said, how long have you been in the Hare Krishna movement for?
तो गुरुदेव ने उनसे पूछा, आप ये कृष्ण भावना में कब से हो?
And one devotee said, 30 years.
एक भक्त ने कहा 30 साल हो गए.
Another devotee said 20 years.
एक भक्त ने कहा 20 साल हो गए.
And you know what I told that devotee? I said, when I was in the movement, 7 years I took sannyas.
Guru Maharaj Ji ne kaha ki main jab is sansthan mein aaya, main 7 saal baad sannyas le liya.
That was 1978.
1978 mein Shri Gurudev ne sannyas liya tha. 7 saal baad.
It's a long time ago.
Kitne saal ho gaye.
So I said, and you've been in the movement so long, you're not, what are you doing with your human form of life? And he said, well, I eat prasadam. I wear a dhoti. But Chaitanya Mahaprabhu said, Amarigai Guru Hoy Tore Desh. Everyone should become preacher of Krishna consciousness in some way or other. Just bring people to Krishna. And then you'll become close to Shiva's Thakur, Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, and your whole life will be successful. And then you'll be able to see the Lord's pastimes. You'll be able to see Lord Ram enacting his pastimes in your spiritual television in your heart. Pure devotees have a spiritual television. They can tune in to any of the Lord's pastimes they want to watch. No more rugby games. Okay. That happy note. So, any questions? No. So then what happens now? Kirtan? No. Hamare gaye guru hoy tore desh. Everyone should become preacher guru. That is the lesson that Garga Muni has left for us. We can't remain children forever, as children forever. The devotees asked me the question, what did I do when Prabhupada left the planet?
Guru Maharaj Ji kehte ki kuch bhi bhakt log pucha ki humne kya kiya thi ki Srila Prabhupada Ji is duniya chhod kar chale gaye.
So, of course, the first thing I did was I cried.
Guru Maharaj kehte pehle ji main bahut roya tha.
Men are allowed to cry sometimes too.
Kabhi kabhi rona zaruri hai.
But then, I understood that if I wanted to keep in contact with Prabhupada the most essential way, then his vani or instructions and his mission was the most important.
Guru Maharaj ne phir socha ki kab tak main rahunga agar main Prabhupada ji ke sang lena chahta hu hamesha ke liye unka jo vani hai unke jo gyan hai jisne diya sabko agar wo lekar main chalunga to sadhyo main Srila Prabhupada ji ke sang mein.
So Prabhupada's leaving the planet forced me to become more mature.
Srila Prabhupada ji jab duniya ko chhode to mujhe bahut majboot kar diya tha aur main pakka bhakt ban gaya.
So when we lose the association of a Vaishnava like Garga Muni, the right thing to do is to become more mature in Krishna consciousness.
Jab aisa mahan mahan bhakto hume chhodte the iska arth kya hai bhagwan hame kuch bata rahe hain ki ab tujhe pakka banna hai.
More determined.
आप और दृढ़ता के साथ अब भक्ति को स्वीकार कीजिए.
Because when we're engaged in devotional service, there's never separation between us and the Vaishnavas.
दृढ़ता के साथ भक्ति करोगे तो कभी विरह नहीं रहेगा. हमेशा भक्त को संग में रहोगे, भगवान के साथ में रहोगे.
Like Prabhupada said, he was never separated from his guru. because he was always engaged in the mission of his guru.
Shri Prabhupada ji ne kaha main apne guru se kabhi alag hua hi nahi, kyunki mera guru jo chahte hai main wahi karta gaya apne jeevan bhar.
And I know when I am engaged full time in Krishna's service, I'm never separated from Prabhupada and I'm never separated from all the Vaishnavas.
Shri Gurudev kehte hai main jab ye Krishna bhavana mere pran dholan machata hu to main janta hu main bhagwan ke sath mein hu, apne guru Prabhupada ji ke sath mein hu.
So if we're feeling the separation from Gargamuni, great Vaishnava, then the solution is to engage in devotional service. Then we're connected. Because Vaishnavas, what is it saying? He reasons ill who says that Vaishnavas die when thou art living still and sound.
व्यक्ति में बताया गया है रोग आ जाएगा जो कहते हैं कि वैष्णव शरीर छोड़ दिए, वैष्णव सदैव रहते अपने वाणी में.
And we have to realize that life is temporary and we do lose the associate, at least the physical association of Vaishnavas.
बाहर से फिजिकली हम लोग एक न एक रोज जो बगल में बैठे सब छूटेगा, मिथ्या है, हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन अंदर से दिव्यता रूप से हम लोग सब साथ में रहेंगे.
Just like right now, all the Prabhupada disciples, including myself, we're about 70 years old, so in 20 years, 99% will be gone.
Srila Gurudev says that as many Srila Prabhupada ji ke chele hain, lagbhag 70 ke hoenge, koi 80 ke hoenge, aur kitne saal aur hum log jiyenge.
So we have to become very serious.
Hum sab ko yahan jisme baithe hain, sabko ab bahut gambhir hona hai.
Okay, so I guess that's it. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada.
Jai. Sarana Sri Gurudev.